بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, आज शनिवार है, तीर माह की 11, जिलहिज्जा की 2 और जुलाई की 2 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत हम आपको अमरीका के मानवाधिकार पर एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा उज्जवल भविष्य। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका सच्चाई पर अमल करे तो समझौता हो सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल की तबाही और बर्बादी निकट है। सीरिया पर इसराइल ने फिर हमला किया है। भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका अगर यथार्थवाद का प्रदर्शन करे तो वार्ता परिणामदायक हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ईरान के उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार अली बाकरी कनी ने बड़ी गंभीरता और उनसे पूर्ण समन्वय से प्रतिबंधों की समाप्ति पर तार्किक और सक्रिय वार्ता का क्रम आगे बढ़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रीय शक्ति और ताकत के आधार पर और सोच समझ कर अपने प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से यथार्थवादी रवैया अपनाने और ईरान को परमाणु समझौते के आर्थिक लाभ मिलने की गारंटी देने से इन वार्ताओं का परिणाम निकल सकता है।
ईरान के हुरमुजगान प्रांत में भूकंप से मरने वालों की संख्या कम से कम 5 हो गई, वहीं 39 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को तड़के रिएक्टर पैमाने पर 6.1 की तीव्रता से आए भूकंप के कई बड़े झटकों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिसकी शिद्दत दुबई समेत पड़ोसी देश यूएई के कई शहरों में महसूस की गई। भूकंप का केंद्र बंदर खमीर और बंदर लंगे शहरों के निकट जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। उसके बाद एक और 6.1 की तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसका केंद्र बंदर गंग के निकट 28 किलोमीटर गहराई में था। इस बीच रिएक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता वाले भूकंप ने बंदर खमीर को हिलाकर रख दिया, जिसका केंद्र 26 किलोमीटर जमीन की गहराई में था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार होर्मुज़गान प्रांत में भूकंप के इन झटकों से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बंदर लंगे के खुशसाए गांव के 39 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए बंदर लंगे और बंदर खमे के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
लेबनान में हिजबुल्ला के उप महासचिव शेख ईसा कासिम ने कहा है कि ज़ायनी शासन के मुकाबले के लिए लेबनान और फिलिस्तीन के सभी मोर्चों पर प्रतिरोधी गुट एकजुट हो गए हैं। अलमना टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अपने एक भाषण में शेख नईम कासिम का कहना था कि इसराइल के साथ समझौतों से एक बालिश्त जमीन भी उसके कब्जे से आज़ाद नहीं हुई है, जबकि प्रतिरोध ने गजा और दक्षिणी लेबनान को आज़ाद करवाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन और लेबनान के सभी मोर्चों पर अब इस्लामी प्रतिरोध एकजुट है, इसीलिए अब अवैध ज़ायनी शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिजबुल्ला के उप महासचिव का कहना था कि इसराइल के साथ जारी लड़ाई उसकी तबाही और बर्बादी के साथ ही खत्म होगी और हम प्रतिरोध के तौर पर फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए एक साथ कार्रवाई करने को तैयार हैं।
शनिवार को सीरिया के तरतुश शहर पर इसराइल के मिसाइल हमले में कम से कम 2 आम नागरिक जख्मी हो गए हैं। सीरियाई सैन्य सूत्रों का कहना है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने इसराइली लड़ाकू विमानों द्वारा दागे गए अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इस हमले में एक महिला समेत 2 आम नागरिक जख्मी हो गए और कुछ माली नुकसान भी हुआ है। इससे एक महीना पहले इसराइल ने दमिश्क के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया था, जबकि मई के महीने में सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया था कि वो इसराइली हवाई हमलों की खुलकर निंदा करे, जो आए दिन उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता रहता है।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अवैध अधिकृत इलाकों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार तड़के वेस्ट बैंक स्थित एक इसराइली सैन्य अड्डे में भीषण आग लग गई। फिलिस्तीन के मीडिया सूत्रों के मुताबिक बैतुल मुकद्दस के उत्तर पूर्व में अल राम शहर के निकट स्थित इसराइली सैन्य अड्डे से आग की भीषण लपटें और धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। इस घटना में तुरंत रूप से किसी के मारे जाने या जख्मी होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। ये घटना ऐसे समय में हुई है कि जब बैतुल मुकद्दस समेत वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर इसराइली हमले में वृद्धि से तनाव चरम पर है। 29 जून को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इसराइली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया था।
इसराइली आतंकवादियों ने वेस्ट बैंक के क्षेत्र पर धावा बोलकर 100 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया। फिलिस्तीन अलियोम की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली आतंकी सैनिकों ने वेस्ट बैंक के नॉबलस केलिया और बैत दजन में जुमे की नमाज के बाद होने वाले प्रदर्शनों के दौरान 100 फिलिस्तीनियों को घायल कर दिया। ज्यादातर फिलिस्तीनी आंसू गैस के शेल फायर किए जाने की वजह से घायल हुए हैं। दूसरी ओर शुक्रवार को इसराइली सैनिकों की सारी रुकावटों के बावजूद मस्जिद अल-अक्सा में 55,000 फिलिस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा की। फिलिस्तीनियों ने ऐलान किया है कि जारी वर्ष 2022 के आरंभ से अब तक केवल वेस्ट बैंक में इसराइली आतंकी सैनिक 1,200 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें से 350 पर अवैध अधिकृत क्षेत्रों में शहादत प्रेमी कार्रवाइयां करने के आरोप हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान हुआ है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को पाकिस्तान में हिरासत में 682 भारतीय कैदियों की सूची उपलब्ध कर दी, जिनमें 49 शहरी और 633 मछुआरे शामिल हैं। भारत सरकार ने भी नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन को भारत में कैद 461 पाकिस्तानी कैदियों की सूची उपलब्ध कराई है, जिनमें 345 नागरिक और 116 मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार यह कार्रवाई पाकिस्तान और भारत के बीच काउंसलर पहुंच के समझौते के अनुसार है, जिस पर 21 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अंतर्गत दोनों देशों को हर साल जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे के पास मौजूद कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान करना होता है।
रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक संबंधों को विस्तृत करने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी के बारे में वार्ता की। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन ने एक बयान में बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच आर्थिक संबंधों और परस्पर संबंधों को विस्तृत करने के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की अपील पर उन्हें यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य ऑपरेशन के मुख्य पहलुओं की सूचना दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कीव और उसके पश्चिमी समर्थकों के खतरनाक प्रवृत्ति और भड़काऊ रवैये के संकट में वृद्धि का कारण और इस संकट के कूटनयिक और राजनीतिक समाधान के लिए जारी प्रयासों में रुकावट करार दिया। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में भी विचार विमर्श किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ देशों की टारगेटेड मिस्टेक की और इशारा करते हुए बल दिया कि यह मामला खाद्य पदार्थों के आज़ाद व्यापार की व्यवस्था में विघ्न डालने और मूल्यों में असमान वृद्धि का कारण बना है। भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन की स्थिति पर वार्ता की और एक बार फिर इस संकट को वार्ता और कूटनीतिक द्वारा हल किए जाने पर आधारित भारत के स्थायी दृष्टिकोण पर बल दिया।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर में एक दर्जी की हत्या के विरोध में हरियाणा के गुड़गांव शहर में आयोजित एक रैली के दौरान एक समुदाय के विरुद्ध जमकर अपमानजनक नारे लगाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुड़गांव पुलिस ने जानकारी दी है कि यह रैली 29 जून को आयोजित हुई थी और सोशल मीडिया पर साझा किए गए उसके वीडियो के आधार पर सिटी थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार 29 जून को कम से कम 80 लोग गुड़गांव के नेहरू पार्क में शाम के करीब 5 बजे जमा हुए और उन्होंने हरीश बेकरी चौक पर तितर बितर होने से पहले सदर बाजार की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक जिहाद आतंकवाद का पुतला भी जलाया। रैली से संबंधित वीडियो में प्रदर्शनकारियों को जामा मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।
भारत के मणिपुर राज्य के नोनी जिले में एक रेलवे निर्माण स्थल पर हुई भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और मरने वालों में 18 सेना के जवान शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक प्रादेशिक सेना के 13 जवानों और 5 नागरिकों को बचा लिया गया है जबकि 38 लोग अभी लापता हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। नोनी जिले में बीते 29 जून की रात टुपुल यार्ड रेलवे निर्माण स्थल के पास प्रादेशिक आर्मी कैंप में भूस्खलन हुआ था।
दिल्ली पुलिस ने पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR में आपराधिक षड्यंत्र और सबूत नष्ट करने जैसे नए आरोप जोड़ दिए हैं। जुबैर को 2018 में किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। जुबैर पिछले महीने उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के उस बयान का वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर किया था जिसमें उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था।
अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हेबतुल्ला अखुनजादा ने काबुल में तालिबान की मेजबानी में आयोजित होने वाले लोया जिरगा को संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई धार्मिक विश्वासों की लड़ाई है जो अभी भी जारी है। शुक्रवार को लोया जिरगा में उपस्थित धर्मगुरुओं और कबायली नेताओं को संबोधित करते हुए तालिबान के नेता ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई जमीन और पानी के लिए नहीं थी बल्कि ये एक धार्मिक युद्ध था। गुरुवार को काबुल में शुरू हुए 3 दिवसीय लोया जिरगा में 3,000 से ज्यादा लोगों के भाग लेने का अनुमान था।
अमेरिका में टेक्सास सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया है कि क्लिनिकल गर्भपात करना जारी रख सकते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड मामले से संबंधित फैसले को पलटते हुए गर्भपात कराने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने का फैसला सुनाया था जिसके बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न प्रांतों को अपनी सुविधा के मुताबिक गर्भपात संबंधी कानून लागू करने का आदेश दिया था। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि टेक्सास के क्लिनिकल जिन्होंने इस सप्ताह मरीजों को देखना फिर से शुरू किया है वे फिर से अपनी सेवाएं बंद करेंगे या नहीं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित है। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री की सीरिया यात्रा, तालिबान द्वारा महिलाओं का विरोध और अमरनाथ यात्रा में कश्मीरियों के सहयोग जैसे विषयों पर आज कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। ईरान ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि सीरिया के विरुद्ध किसी भी सैन्य कार्रवाई का वो विरोधी है। तेहरान का कहना है कि सीरिया संकट का समाधान कूटनीतिक मार्गों से ही संभव है। इस बारे में एक समीक्षा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान सीरियाई अधिकारियों से भेंट वार्ता के उद्देश्य से दमिश्क पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ناصر قنعانی نے دی اور کہا کہ ودیش منتری کی سیریہ یاترا کا ادیش دوپکشیا چھیتری اور انتراشٹری وشیوں کے سمبندھ میں وچاروں کا آدان پردان کرنا ہے۔ ودیش منتری کی سیریہ یاترا ایسے سمے میں ہو رہی ہے جب پچھلے سپتاہ 27 جون کو ودیش منتری نے ترکی کی یاترا کی تھی اور اس دیش کے ادھیکاریوں سے دوپکشی اور سیریہ سہت چھیتری و انتراشٹری سمسیاؤں کے بارے میں وچاروں کا آدان پردان کیا تھا۔ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के साथ मुलाकात में बल देकर कहा था कि तेहरान सीरिया में हर प्रकार की सैन्य कार्रवाई का विरोधी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश सीरिया के उत्तर में सैन्य कार्रवाई करने वाला है। आतंकवाद से मुकाबले के बहाने सीरिया और इराक में तुर्की द्वारा हमला क्षेत्र के उन विषयों में से है जिनके बारे में मतभेद हैं। ईरान का मानना है और वो बल देकर कहता है कि राजनीतिक मार्गों से सीरिया संकट का समाधान होना चाहिए और ये वो बात है जिसके बारे में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा है कि तुर्की की सुरक्षा चिंताओं के समाधान के मार्ग का एकमात्र मार्ग राजनीति है और हर प्रकार के हमले के दोबारा न किए के साथ बल देकर हम कहते हैं कि सार्थक वार्ता के लिए भूमि प्रशस्त करने हेतु तैयार हैं। तेहरान के अनुसार सीरिया में शांति व सुरक्षा की स्थापना में इस्लामी गणतंत्र ईरान की शक्तिशाली उपस्थिति जरूरी है। उसकी मुख्य वजह यह है कि ईरान ने आतंकवाद से मुकाबले में सीरिया में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और अगर आतंकवाद से मुकाबले में ईरान ने इराक और सीरिया में मदद न की होती तो आज इन देशों में आतंकवादी गुटों की सरकारें होती। इस समय राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों में ईरान और सीरिया के संबंधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और बहुत से मामलों में ईरान और सीरिया के दृष्टिकोण समान हैं। जैसे दोनों देश सीरिया में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति और हमलों के विरोधी हैं, इसी प्रकार ईरान और सीरिया ज़ायनी शासन और अरब देशों के साथ संबंधों के समान बनाए जाने के भी विरोधी हैं। साथ ही कुछ मामलों में ईरान और तुर्की के मध्य मतभेद होने के बावजूद यमन में युद्ध विराम और परिवर्तन समाप्त करने और इसी प्रकार फिलिस्तीन समस्या के समर्थन में दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की विदेश नीति स्वतंत्र है और वो क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में बाहर के देशों के हस्तक्षेप का विरोधी है और उसका मानना है कि क्षेत्रीय देशों के सामूहिक प्रयास व सहयोग से शांति व सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इस समय भी इस बात की संभावना है कि तुर्की सीरिया में नया सैन्य ऑपरेशन आरंभ कर सकता है तो ईरान के कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की तुर्की के बाद सीरिया यात्रा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
तालिबान नेता का कहना है कि दुनिया हमें ये सिखाने की कोशिश न करे कि हम शासन किस प्रकार से चलाएं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि शासन कैसे किया जाता है। एक समीक्षा लेकर हाजिर हैं सैयद मीसम।
गुरुवार को काबुल में तालिबान की मेजबानी में शुरू हुए 3 दिवसीय लोया जिरगा में 3,000 से ज्यादा कबाइली नेताओं और धर्मगुरुओं ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की शिक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन इसमें अफगान महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। तालिबान द्वारा महिलाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने का देश की महिलाओं ने विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है कि वो तालिबान सरकार को औपचारिकता प्रदान न करे। दरअसल ये पहली बार है कि तालिबान ने इस तरह का कोई सम्मेलन आयोजित किया है, वरना उनकी विचारधारा में गैर तालिबान के साथ शासन के मामलों में सलाह और विचार विमर्श के लिए कोई जगह नहीं है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान नेताओं को ये सलाह दी थी कि देश में लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए वो इस तरह के सम्मेलन का आयोजन करें, ताकि तालिबान आम लोगों से जुड़ सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बहिष्कार में कुछ नरमी आ सके। इसके बावजूद लोया जिरगा को संबोधित करते हुए तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला आखुनजादा ने कहा, दुनिया हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और हमें ये सिखाने का प्रयास न करे कि शासन कैसे किया जाता है। तालिबान के लोया जिरगा के बारे में अफगान विश्लेषक फरहाद अबरार का कहना है कि ये सम्मेलन या लोया जिरगा अधूरा है, क्योंकि इसमें देश की आधी आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले साल अफगानिस्तान से अमरीका के बाहर निकलने और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को लेकर दुविधा का शिकार हैं। इसे लेकर खुद तालिबान के बीच मतभेद हैं। एक धड़ा शासन के मामले में एक उदार छवि पेश करना चाहता है, तो दूसरा अपने कट्टरवादी सिद्धांतों में किसी तरह की ढील देने और महिलाओं के अधिकारों पर बात करने का कट्टर विरोधी है। बहरहाल देर या सवेर तालिबान को यह समझना ही होगा कि वो देश को दुनिया से काटकर और देश की आधी आबादी को पूरी तरह से हाशिए पर डालकर शासन नहीं कर सकते। आखिरकार तालिबान को महिलाओं के साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और अपनी कट्टरपंथी सोच में कुछ नरमी दिखानी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बाहर से नहीं बल्कि देश के भीतर से ही उनकी नई और कमजोर सरकार को असली खतरे का सामना करना पड़ेगा और एक बार फिर देश टकराव के रास्ते पर चल पड़ेगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। एक कश्मीरी अधिकारी ने बताया है कि बाबा अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को हमेशा से कश्मीरियों का सहयोग मिलता रहा है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसे नई दिल्ली का आशीर्वाद हासिल है, ने नई दिल्ली से आह्वान किया है कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव आयोजित करें। दक्षिणी कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर ताबड़तोड़ आक्रमण करते हुए कहा कि इन दो दलों की वजह से जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से जितने भी वादे करेंगे, अगर हमने वो पूरे नहीं किए तो हम लोगों से कहेंगे कि वो हमें दोबारा मत न दें। उन्होंने कहा कि 70 वर्षीय इतिहास हमें बता रहा है कि इन दलों ने जम्मू कश्मीर के तामीर तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने नई दिल्ली से भी आह्वान किया कि वो फौरी तौर पर चुनाव डेट अनाउंस करें ताकि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ हो। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष संजय सराफ ने श्रीनगर में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन से कहा है कि यात्रा का तो हम स्वागत करते हैं और हमारा ये मानना है कि जब से यात्रा आरंभ हुई है कश्मीर का हर वर्ग उसका स्वागत कर रहा है और यात्रियों के लिए हर संभव सहायता भी प्रदान कर रहा है, परंतु जो स्थिति बनी हुई है वो इंतहाई गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से मार्गों को बंद किया जा रहा है और उन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है जहां से यात्रा हो रही है, ये आम नागरिकों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि यात्रा के साथ साथ नागरिकों का भी ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
आज की जो प्रेस वार्ता है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे कश्मीर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर ने हर एक फेस्टिवल को खुले दिल और खुले दिमाग से प्यार से एक्सेप्ट किया है। इन पर्टिकुलर जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से अमरनाथ जी की जो यात्रा है, कश्मीर में इतने सालों से हालात खराब है, लेकिन आज तक कभी भी यात्रियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ने कहीं पर भी नुकसान करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त अमरनाथ यात्री को एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ही नहीं माना गया। ये एक अमरनाथ यात्रा जब भी स्टार्ट होती है तो हर एक कश्मीरी फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट दे हैव ऑलवेज वेलकम्ड। तो आज हम अमरनाथ यात्री को, जितने भी यात्री, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा यात्री आ जाए जम्मू कश्मीर में। उसके साथ में हम गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ गवर्नमेंट जेके से गुजारिश करना चाहते हैं कि यात्रा हम सब के लिए, हमारे लिए बहुत खुशी का कदम भी है और इसको हम फुल समर्थन कर रहे हैं, पूरा कश्मीरी समर्थन कर रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड एक मैसेज भी बहुत गलत तरीके से जो ग्राउंड जीरो पर जा रही है, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, कोई एम्बुलेंस सड़क पर होती है, उस बेचारे को क्रॉस करने नहीं देता, किसी बच्चे को स्कूल में एग्जाम के लिए जाना होता है, दो दो दिन तीन तीन दिन लोग फंस जाते हैं। मीडिया के कुछ फैटर्निटी के लोग जम्मू से श्रीनगर आ रहे थे, उनको रास्ते में रोका गया। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो उनकी पॉलिसीज है एज पर सिक्योरिटी कंसर्न्ड, हम उसमें कोई बात नहीं करते बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ कैपेसिटी, बट वी रिक्वेस्ट देम उस चीज के लिए एक प्रोसेस रखी जाए।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है, जिसमें एक अलगाववादी छापा मार के हताहत होने की सूचना है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब आप सुनेंगे अमेरिका में मानवाधिकार की स्थिति पर एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, कार्यक्रम अमेरिका में मानवाधिकारों की स्थिति में आपका स्वागत है। सैयद मीसम और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरानी कैलेंडर में 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक को अमेरिकी मानवाधिकार सप्ताह का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि अमेरिकी अपराधों, विशेष रूप से ईरानी जनता पर अमेरिकी अत्याचारों को याद रखा जाए।
बड़ी शक्तियां अपने हितों को साधने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती रही हैं ताकि वो हालात को अपने हितों के मुताबिक मोड़ सकें। एक ऐसा हथकंडा जिसका आजकल बड़ी शक्तियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, आतंकवाद का समर्थन है। दरअसल आतंकवाद का दोहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी शक्तियां जब अपने हितों के मुताबिक आतंकवाद का इस्तेमाल करती हैं तो उसे कभी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष तो कभी कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है। वहीं अगर संघर्ष बुनियादी अधिकारों के लिए है लेकिन वो उनके हितों के अनुसार नहीं है तो उस पर आतंकवाद का लेबल चिपका दिया जाता है।
व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कोई भी रहा हो, उसने मानवाधिकारों के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ का नारा बुलंद किया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर नजर डाली जाती है तो पता चलता है कि आतंकवादी गुटों का समर्थन करके व्हाइट हाउस अपने हितों को साध रहा है और मानवाधिकारों की बलि भी खूब धूमधाम से चढ़ाई जा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिकी सरकारों और ईरान की इस्लामी क्रांति के विरोधी आतंकवादियों के बीच एक संबंध रहा है। इस बारे में कई दस्तावेज मौजूद हैं और उनमें से एक ये है कि अमेरिकी अधिकारी उनके सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं।
न्यूज वीक ने अक्टूबर 2019 के अपने संस्करण में लिखा था, अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वकील रूडी जोलियानी और कई अन्य अधिकारियों ने इस्लामी क्रांति के विरोधी आतंकवादियों के सम्मेलन में भाग लिया और उनका समर्थन करने के बदले उनसे पैसा वसूल किया। इराकी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के पूर्व सदस्य अस्कंदर वतूत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वर्षों से फ्रांसीसी और अमरीकी आतंकवादी गुट मुजाहिदीन खल्क का इस्तेमाल ईरान को चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये ऐसा आतंकवादी गुट है कि जिसने दसियों आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है और दाइश के साथ इसके गहरे संबंध हैं।
मुजाहिदीन खल्क सिर्फ एक ऐसा आतंकवादी गुट नहीं है जिसका अमेरिका समर्थन करता रहा हो। अमेरिका कई आतंकवादी गुटों का समर्थन करता रहा है और कई का उसने गठन भी किया है। इस दावे के लिए कई पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। रीगन के शासनकाल में CIA के प्रमुख विलियम एडम्स ने अपनी यादों की किताब में लिखा है, अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करता था। 80 के दशक में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा का इस्तेमाल किया ताकि इस्लामी जगत में अपने हितों को साध सके। हालांकि औपचारिक रूप से वॉशिंगटन कट्टरवाद का विरोध करता था, लेकिन हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल भी करता था।
ट्रंप खुलकर डेमोक्रेट्स पर दाइश के गठन का आरोप लगाते थे। उनके इस बयान की वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था, एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से आज हम लड़ रहे हैं 20 साल पहले खुद हमने उनका गठन किया था। हमने उन्हें सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से निकलने की अनुमति दी ताकि वे वहाबी इस्लाम का प्रचार कर सकें। सीरिया में भी हमने यही काम किया, यानी सीरिया और रूस के खिलाफ अलकायदा का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में हमारी योजना ने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और सीरिया में भी अमेरिका के प्रतिनिधित्व में इस्लामिक स्टेट यही कहानी दोहरा सकता है। 2016 में इंडिपेंडेंट ने जूलियन असांजे के हवाले से ट्रंप के दावे के समर्थन में लिखा था कि क्लिंटन फाउंडेशन और दाइश की वित्तीय सहायता करने वाले एक ही लोग हैं।
ऑस्ट्रेलियाई लेखक टीम एडरसन ने अपनी किताब सीरिया की गंदी लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन और प्रतिरोध में लिखा, अमेरिका हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का दावा करता था, लेकिन खुफिया तौर पर वह आतंकवादियों का प्रशिक्षण करता रहा और उन्हें हथियारों की आपूर्ति करता रहा। इस किताब के मुताबिक दाइश के कुछ सरगना ग्वांटानामो बे जेल में रह चुके थे, जैसे कि अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त। दाइश का पहला सरगना अबू बकर अल बगदादी इराक स्थित अमेरिकी जेल में कैद था। जेल में ही उसका CIA और मोसादा के एजेंटों ने ब्रेन वॉश किया था। 2015 में सिमिर हर्ष ने लिखा था कि ओबामा शासन और CIA दाइश को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने स्वीकार किया था कि अमेरिका ने इसलिए दाइश को हथियार दिए क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी में बशार असद की आर्मी का मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी।
अमेरिकी विसेल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने पर्दाफाश करते हुए कहा था कि CIA ब्रिटेन और ज़ायनी शासन ने दाइश का गठन करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूनेस्को ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, इराक के लिए अमेरिका के $1 अरब के मूल्य की हथियारों की खेप लापता हो गई है और संभवतः वो दाइश के हाथ लग गई है। इन रहस्योद्घाटनों से स्पष्ट है कि आतंकवाद अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हथियार है। अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों के समर्थन का नारा दिखावटी है।
खुद अमेरिका में जब मानवाधिकारों की बात आती है तो कहा जाता है कि यह देश अपनी विदेशी नीति में आक्रामकता जरूर रखता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है और सभी के अधिकारों का भरपूर ख्याल रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति लोगों का वास्तविक प्रतिनिधि होता है और वह जो भी फैसला लेता है वह आम लोगों के हितों को देखकर लेता है। मीडिया अमेरिका की कुछ इस तरह की तस्वीर पेश करती है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अमेरिका में अमेरिकी नागरिक ही मानवाधिकारों के नाम पर सबसे पहले बलि चढ़ते हैं।
इस संदर्भ में सबसे पहला बिंदु यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र बुनियादी तौर पर एक पूंजीवादी लोकतंत्र है। अमरीकी लेखक और शोधकर्ता माइकल पिंजी ने अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था को अल्पसंख्यक केंद्रित लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया है, जो बहुमत के नाम पर शासन करता है लेकिन अमीर अल्पसंख्यकों के पक्ष में काम करता है। पिंजी का मानना है कि कई सरकारी नीतियां बड़े निवेशकों के लाभ के लिए और आम लोगों के नुकसान में हैं। इस व्यवस्था में अमीर अमीर होता चला जाता है, जिसके पास इतना पैसा होता है कि उसे नहीं पता कि इसका क्या करना है और इसे कैसे खर्च करना है। वहीं गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था दरअसल एक राजशाही व्यवस्था है।
दूसरा बिंदु यह है कि अमेरिका के सामाजिक ढांचे में समानता नहीं पाई जाती है और भेदभाव इस समाज की एक बड़ी प्राचीन समस्या है। अफ्रीकी और एशियाई मूल के नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है, यहां तक कि नौकरियों में भी कालों के साथ भेदभाव किया जाता है। अमेरिका में अश्वेतों में बेरोजगारी की दर श्वेतों से दोगुनी है। शिक्षा केंद्रों में भी इस भेदभाव को देखा जा सकता है। 11 सितंबर की घटना के बाद से मुसलमानों के साथ भेदभाव में काफी वृद्धि हो गई है। इस भेदभाव के परिणाम स्वरूप जातिवादी हमलों में वृद्धि हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली थी। इसके स्पष्ट उदाहरणों में से लैटिन अप्रवासियों पर दबाव में वृद्धि, उन्हें अमेरिका से बाहर निकालने के लिए उठाए गए कदम और कुछ इस्लामी देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रपति के तुगलकी फरमान का उल्लेख किया जा सकता है।
अमेरिकी समाज में अश्वेतों को किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के हनन के कई मुख्य कारण हैं। सबसे पहला ये कि आज तक अश्वेतों को समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 13% है, वे अल्पसंख्यक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक नहीं समझा जाता। बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति काल की समाप्ति के बाद कहा था कि खुद उन्हें अपने शासनकाल के दौरान अमरीका के राजनीतिक समुदाय की ओर से भेदभाव का सामना करना पड़ा।
अमेरिकी समाज में जिस तरह से मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा पीटा जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इस देश में राजनेताओं और खुफिया एजेंसियों द्वारा मीडिया और पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। ट्रंप के शासनकाल में यह स्थिति ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई और मीडिया ने ट्रंप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुश्मन करार दिया। ट्रंप ने 2020 में श्वेत पुलिसकर्मियों के हाथों अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शनों को ताकत के बल पर कुचलने का आदेश दिया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानवाधिकार अमेरिका की विदेशी नीति का एक हथियार है, जिसे अमेरिकी सरकारें अपने हितों के आधार पर इस्तेमाल करती रही है। जहां तक अमेरिकी समाज की आंतरिक स्थिति की बात है, इसका इस्तेमाल पूंजीपतियों के अधिकारों की आपूर्ति और एक छोटे वर्ग के हितों के अनुसार किया जाता है। इस समाज के दूसरे वर्गों जैसे कि अश्वेतों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकारों का कोई अर्थ नहीं है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्जवल भविष्य।
उज्जवल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद पर्यटन उद्योग, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन के विस्तार की चर्चा करेंगे।
श्रोताओ, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि ईरान ने हालिया वर्षों में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित किया, लेकिन ईरान की चिकित्सा क्षमताओं के मद्देनज़र इन सेवाओं का उपयोग उसके आकार के अनुपात में नहीं किया जा सका। इसके लिए अव्यवस्थित रूप से की जाने वाली गतिविधियों को व्यवस्थित करने और एक व्यापक योजना बनाने की ज़रूरत है। ईरान की विशेष भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारक और शिया मुसलमानों के आठवें इमाम का पवित्र रोजा ईरान को पर्यटन के लिए एक मुख्य आकर्षण प्रदान करता है।
इस्लामी क्रांति के बाद जिन क्षेत्रों में ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है, उनमें से एक पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग को किसी भी समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है और देशों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के मामले में ईरान दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। इस्लामिक क्रांति के बाद 15,581 धरोहरों की मरम्मत की गई, जिसके कारण देश में ऐतिहासिक पर्यटन में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर्यटन के क्षेत्र में 600 से ज्यादा कानून और दिशा निर्देशों से पर्यटन के विकास के लिए ईरान की गहरी दिलचस्पी को देखा जा सकता है।
इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में पर्यटन मार्गों और केंद्रों में 200 गुना की वृद्धि हुई। ट्रैवल एजेंसियों और यात्रा सेवाओं के लिए लाइसेंस की संख्या में 200 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई और इस्लामिक क्रांति के बाद उनकी संख्या बढ़कर 4,800 हो गई। इससे पता चलता है कि इस्लामिक क्रांति के बाद इस उद्योग तक किस तरह से आम लोगों की पहुंच को संभव बनाया गया। क्रांति से पहले देश में एकमात्र पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण केंद्र ईरान पर्यटन और होटल सेवा केंद्र था। क्रांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ और अब पर्यटन विश्वविद्यालय के अलावा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा केंद्रों में 100 से ज्यादा फैकल्टी इस विषय में प्रशिक्षण दे रही हैं और अध्ययन किया जा रहा है।
इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सांस्कृतिक विरासत हस्तशिल्प और पर्यटन के संगठनात्मक और संरचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। इस तरह से कि क्रांति से पहले सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं थी। काजारी काल से ही ईरानी हस्तशिल्प को चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना रहा है, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण गुणात्मक वृद्धि देखी गई। दुनिया भर से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के पर्यटकों का बड़ी संख्या में ईरान का रुख करने से पश्चिमी मीडिया के उस अभियान को झटका लगा है, जिसके द्वारा ईरान की बहुत ही खराब छवि पेश की जा रही थी। अधिकांश विदेशी पर्यटक जब ईरान की समृद्ध और प्रगतिशील इस्लामी व्यवस्था और संस्कृति को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। वे यहां आकर अपनी आंखों से देखते हैं कि ईरान की जो छवि पश्चिमी मीडिया ने पेश की है, वास्तविकता बिल्कुल उसके विपरीत है। परिणाम स्वरूप वे अपने देशों में वापस लौटकर इस्लामी गणतंत्र और उसकी संस्कृति के दूत बन जाते हैं।
ईरान के पूर्व शाही शासन ने ईरान में राजशाही इतिहास को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की और अमरीका और पश्चिमी सरकारों के समर्थन पर निर्भर होने के बावजूद वो देश के पेर्स पुलिस और पासारगाद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों को पंजीकृत कराने में सफल नहीं था। हालांकि क्रांति की सफलता के बाद यही काम अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इन स्मारकों को विश्व विरासत के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। पर्यटकों को दो भागों, देशी और विदेशी में बांटा जाता है। ईरान एक विशाल देश है जिसकी आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है। ये देश विविध प्रकृति और विविध संस्कृतियों का देश है। यहाँ 4 अलग अलग मौसम हैं। इस्लामी क्रांति से पहले आम लोगों की आय काफ़ी कम होती थी जिसके कारण वे यात्रा का खर्च वहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए पर्यटन सिर्फ समाज के कुछ वर्गों तक सीमित था।
ईरान में शाही शासन के पतन और इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद शाही परिवार और दरबारियों की संपत्तियों को ईरानी राष्ट्र के हित में जब्त कर लिया गया। शाही परिवार के सदस्यों और दरबारियों के पास मनोरंजन और अय्याशी के लिए 83 महल थे जिन्हें जब्त करके संग्रहालयों में बदल दिया गया। ईरान में शाही परिवार के महलों को शिक्षाप्रद राष्ट्रीय परिसरों परिवर्तित कर दिया गया जिन्हें देखने के लिए लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं।
अगर हम देश में पर्यटकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि क्रांति से पहले विदेशी पर्यटकों की सालाना संख्या केवल 5 लाख थी, लेकिन इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़कर 50 लाख प्रतिवर्ष हो गई है। हालांकि वैश्विक मानक की दृष्टि से ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के पास बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद ईरान ने अमेरिका के नेतृत्व वाली वर्चस्ववादी शक्तियों के हितों को खतरे में डाल दिया, जिसकी वजह से क्रांति की सफलता की शुरुआत से ही इसे निशाना बनाया गया और अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा ईरान की छवि को खराब करने के लिए मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि क्रांति से पहले और उसके बाद ईरानी लोगों के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन हुआ और ये सम्मानजनक दृष्टिकोण में बदल गया। ये उपलब्धि ईरान में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण हासिल हुई।
ईरान अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति और विविध जलवायु के बावजूद पर्यटन के लिए दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। यह विदेशी पर्यटकों के लिए एक विशिष्टता और काफी कम खर्च पर विविध ऐतिहासिक स्मारकों और दुनिया की सबसे सुंदर जगहों का दर्शन कर सकते हैं। हालिया वर्षों में ईरान में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार हुआ है। 120 पर्यटन प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है और 27,500 लोगों को पर्यटन से संबंधित विशिष्टताओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में विकास के लिए भूमि प्रशस्त हुई है।
ईरान में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा प्रदर्शनियों, समारोहों, प्रांतीय सांस्कृतिक सप्ताहों जैसे अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी स्तरों पर 555 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों से पर्यटन के क्षेत्र को एक लाभकारी पेशे में बदलने में मदद मिली। इस्लामी गणतंत्र ईरान में पर्यटन के विस्तार से आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन को लाभ पहुंचा। विश्व पर्यटन और यात्रा परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ईरान देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6.1%, लगभग $7 अरब इस क्षेत्र से हासिल करने में सक्षम है।
इस्लामी देश के रूप में ईरान को एक दूसरी विशेषता यह हासिल है कि वह बड़ी संख्या में मुस्लिम पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। اسلامی کرانتی کے بعد شیعوں کے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روزے کا بڑے استر پر وستار ہوا اور اب یہ 12,000 ورگ میٹر سے لگ بھگ 6,00,000 ورگ میٹر کا ایک وشال تیرتھ استھل بن گیا ہے۔ اسلامی دنیا میں یہ اب سب سے مہتوپورن پریٹک آکرشنوں میں سے ایک ہے جہاں سالانہ 3 کروڑ زائرین زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال کروڑوں لوگ قم میں استھت حضرت معصومہ کے روزے کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ شیراز اور تہران جیسے شہروں میں بھی مہان دھارمک ہستیوں کے مقبرے ہیں جہاں بڑی سنکھیا میں لوگ زیارت کے لیے جٹتے ہیں۔
اسلامی کرانتی کی پہچان بھی ایران میں پریٹن کا ایک آکرشن ہے۔ اسلامی کرانتی 20ویں صدی کی مہان کرانتیوں میں سے ایک ہے جس نے ایران کھیتر اور وشو پر اثر ڈالا۔ اس کرانتی کا اصلی اور امر چہرہ امام خمینی ہیں۔ صرف کتابوں کے ذریعے سے اسلامی کرانتی کی پہچان اور امام خمینی کی شخصیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی یاترا اور نزدیک سے اس دیش کو دیکھنے سے اسلامی کرانتی کو پہچاننے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے 19 مہینے بعد صدام نے ایران پر جنگ تھوپ دی جو 8 سال تک چلی۔ جنگ کے بعد اس جنگ کی ہزاروں اور لاکھوں یادگاروں کو سنگرہالیوں اور انیہ ستھلوں پر سرکشت کر لیا گیا ہے۔ شروتاؤں کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے اس پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹس پر سن رہے تھے۔ اور اب پرستوت ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ سچائی پر عمل کرے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی تباہی اور بربادی نکٹ ہے۔ سیریا پر اسرائیل نے پھر حملہ کیا ہے اور بھارت اور پاکستان نے قیدیوں کی سوچیوں کا آدان پردان کیا ہے۔ دوستوں میں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو انمتی دیں۔ خدا حافظ۔Thank you.